उपस्थित संत महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, मानव सेवा संघ की दृष्टि से मनुष्य के जीवन में ईश्वर विश्वास का क्या महत्व है, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ईश्वर विश्वास एक ऐसा विलक्षण तत्व है हमारे जीवन का कि जिस किसी भाई बहन ने इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि परमात्मा है और उन्हीं से मेरा नित्य संबंध है, केवल इतनी बात मान लेने से ही चमत्कारपूर्ण परिवर्तन अपने आप में आता है। महाराज जी का एक छोटा सा नोट मेरे पास एक दिन मिला, बड़ी बढ़िया भाषा में है, दो चार पंक्ति सुना के फिर चर्चा करती हूँ। कह रहे हैं परमात्मा है, यह सुनने के लिए कितनी भूमिका तैयार चाहिए। अब आप सोच करके देखो कि हम लोग भूमिका तैयार करके सुनने आए हैं क्या। मैंने ऐसा सुना है कि पुराने समय में अनुभवी संत जन वन में निर्जन में रहा करते थे और नगरों में से कोई कोई जिज्ञासु जब सत्य की जिज्ञासा से अथवा प्रभु प्रेम की अभिलाषा से व्याकुल होता तो भाग भाग करके वन में संतों के पास जाता और अपनी बात बताता उनको। तो कई उदाहरण ऐसे सुने गए कि वे संत उनको कोई न कोई सेवा बता देते, ये था ठीक है तुमको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए मिल जाएगा। कैसे मिलेगा महाराज? तो महाराज ने उस आदमी की योग्यता दशा देख करके कोई सेवा बता दी, करते रहो करते रहे करते रहे करते रहे, बड़ी लगन से दो महीने चार महीने साल दो साल बीते, बीच बीच में जा करके फिर पूछते महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर अच्छा मिल जाएगा, चलो करते रहो करते रहो। तो अब क्या है कि अनुभवी संत जन साधक को कोई सत्य सुनाने के लिए पहले उसको तैयार किया करते थे। सुख का भोग छूट गया, आलस्य छूट गया, सुविधा पूर्वक रहना छूट गया और तन मन सब शक्ति सब योग्यता संत की सेवा में लग गई तो अपनी स्वाधीनता चली गई, अपने संकल्प से काम करना खत्म हो गया। ये सारी तैयारी संतजन पहले उस जिज्ञासु की करा लेते और तब मैंने सुना है कि उनको कोई वाक्य सुनाया जाता खास तैयारी के बाद खास विधि विधान से खास समय पर, ऐसा मैंने सुना है। तो उस दिन जब मैं देख रही थी महाराज जी के प्रवचन का नोट सब जो मेरे पास है तो उसमें यह गद्य खंड मिला मुझे। वो तो कह रहे हैं कि परमात्मा है, यह सुनने के लिए कितनी भूमिका तैयार चाहिए, पहले से कितनी तैयारी करोगे तब इस वाक्य को सुनने के अधिकारी बनोगे। नहीं तो क्या होता है कि हम कहते जाते हैं सुनते जाते हैं और वो जा करके भीतर में कहीं पर स्टैंप लगाता ही नहीं है, कहा हुआ सुना हुआ भीतर पता नहीं क्या क्या कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है। संत की वाणी हम सुन लेते हैं कान से लेकिन आम पर जाकर के वो स्टंप लगाता ही नहीं है, उड़ जाता है। तो फिर उसी को सुनने के लिए दोबारे आते हैं, तो फिर उसी को सुनने के लिए और प्रयास करते हैं। तो मुझे यह वाक्य बड़ा अच्छा लगा। महाराज जी ने उत्तर क्या दिया है, अपने से अपनी ओर से बताया है, परमात्मा है यह सुनने के लिए वह तैयारी चाहिए जिसमें सारा संसार दुख रूप मालूम होने लगता है। तो सोचा मैंने, तो हमने कहा कि तब तो हम अधिकारी ही नहीं हुए, क्योंकि सारा संसार अभी तो दुख रूप मालूम नहीं हो रहा। अभी क्या हो रहा है कि मन के प्रतिकूल कोई कोई परिस्थिति दुख रूप ही लग रही है, ठीक है ना? मन के प्रतिकूल कोई कोई व्यक्ति के साथ में रहना दुख रूप मालूम हो रहा है। सारा संसार दुख रूप तो हुआ ही नहीं, इसलिए परमात्मा है यह वाक्य मेरे व्यक्तित्व पर स्टैंप नहीं लगा पाता। दूसरा पॉइंट है इसी में, अपनी असमर्थता की गहरी पीड़ा होनी चाहिए। दो बातें हो गई ना, ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अब उनकी मौत थी और किस लहर में बोल रहे थे पता नहीं, हमारे पास इतना ही सब लिखा हुआ है। और ये है 9573 गीता भवन में वटवृक्ष के नीचे बातचीत हो रही थी, उसमें से इतना मैंने लिखा है। 1973 के मई महीने 9 तारीख की बात है। अपनी असमर्थता की गहरी पीड़ा होनी चाहिए, तो यह भूमिका तैयार हो जाए तब हम इस वाक्य को सुनने के अधिकारी बने कि परमात्मा है। इतनी तैयारी के साथ परमात्मा को सुनने से उसे मान लिया जाता है। इतनी तैयारी करके सुनने चलेंगे तो मानने की सामर्थ्य आ गई, फिर परमात्मा उसका अभाव मिटा देते हैं। बहुत बढ़िया बात है, परमात्मा उसका अभाव मिटा देते हैं, फिर उसका दुख मिटा देते हैं, फिर उससे मिल भी लेते हैं। शरणागति स्वीकार करते ही मोह का नाश हो जाता है, भक्त तत्व ज्ञानी भी हो जाता है। और कहते कहते कभी कभी महाराज जी अपनी बात भी कह डालते थे, उसी जगह पर ब्रैकेट में मैंने ये लिख रखा है, कहा होगा उन्होंने, कहते ही शरणागति स्वीकार करते ही मोह का नाश हो जाता है, भक्त तत्व ज्ञानी भी हो जाता है, और बिना किसी प्रक्रिया के मुझे तत्व ज्ञान हो गया। महाराज जी का वाक्य है, सिद्धांत बोलते बोलते अपने अनुभव की बात बोल गए, बिना किसी प्रक्रिया के मुझे तत्व ज्ञान हो गया। तो अभी हम लोग इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, ईश्वर को मानने की आवश्यकता क्या है, ईश्वर को मानने में अपने लोगों को तैयारी कितनी चाहिए। तो कुछ बातें साधन काल की आपकी सेवा में निवेदन करूं। अगर मैं पूछूं कि आप भाई बहनों में से कितने साधक ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते हैं, ऐसा मैं पूछूं तो बहुत ही तत्परता के साथ हमारे सभी भाई बहन हाथ उठा देंगे, ठीक है ना? इसमें कोई झूठी बात नहीं है, कोई गलत नहीं है, हम सब लोग उनको मान करके बैठे हैं। लेकिन अब इसके साथ ही अपनी दशा को देखें, ईश्वर को मानने वाले का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि उसके जीवन में से अभाव खत्म हो जाना चाहिए। जी ठीक है ना? जीवन में अभाव सताता है, इस बात का अनुभव आप सभी अपने अपने ढंग से करते होंगे। मुझे पता नहीं है कि कैसा कैसा अपने लोगों को लगता है, लेकिन अपनी बात मैं जानती हूँ, अपना पता मुझे है। बहुत छोटी उम्र से खूब खेल रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, खूब मित्र मंडली में सभी सहेलियों के साथ, तो किसी भी प्रकार से मुझको भीतर से उतनी प्रसन्नता लगती ही नहीं थी कि जितनी लगनी चाहिए। तो खेलते खेलते मैं रुक जाती और सोचती कि बस हो गया, इतना ही मजा है, इससे तो मेरा जी भरा नहीं, और मिलना चाहिए, और मजे की खोज में चलो, और खेलो, और खाओ, और पहनो। ऐसा करते ही करते थोड़े ही समय में इतनी घनी प्रतिकूलता सामने आ गई, सब प्रेम का जो एक वातावरण माता पिता के लाड़ प्यार दुलार का, खेलने का कूदने का, वो सब एकदम एक भयंकर घोर दुखद परिस्थिति में समय बदल गया। तो अब उसके बाद तो फिर अभाव की पीड़ा का क्या करना, तो वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और जब मैं संत के पास पहुंची, वो इस प्रश्न को लेकर पहुंची कि क्या मनुष्य सारी जिंदगी अभाव की पीड़ा को सहते रहने के लिए पैदा हुआ है, क्या मनुष्य हमेशा अभाव में पड़ा ही रहेगा कि अभाव मिटता भी है? तो मैं अपने ढंग से अपनी साहित्यिक भाषा में बोला करती स्वामी जी को, महाराज मैं तो अभाव का अभाव करने आई हूँ। अभाव का अभाव कैसे होता है ये मुझे सिखाओ, बताओ। तो अभाव की पीड़ा को जिन भाई बहनों ने अनुभव किया है उनको इस बात का प्रत्यक्ष आनंद आ गया होगा कि ईश्वर हैं और मेरे अपने हैं, इस स्वीकृति मात्र से कैसे वो भीतर की कसक, एक बेबची की पीड़ा, अभाव का एक दुख कैसे मिट जाता है, ये उन भाई बहनों के अनुभव की बात होगी। मैं समझती हूँ कि साधारणतः साधक लोग क्या मान लेते हैं कि हम खूब आंख बंद करके जप करेंगे, ध्यान करेंगे, नाम लेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो उसका परिणाम ये होगा कि किसी दिन भगवान प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, मुझको दर्शन मिल जाएगा, मैं देख लूं कि ये है भगवान। ऐसी बात, ऐसी कल्पना, ऐसा चिंतन भाई बहनों के दिल दिमाग में रहता है। साधकों से मैंने ऐसी चर्चा सुनी है, लेकिन जीवन का विश्लेषण करने की आदत जो थी मेरी पुरानी, उसमें मानव सेवा संघ का सिद्धांत जो है वो एकदम 100% फिट बैठ गया। उसका मतलब ये है कि किसी क्षण में भगवान तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष दिख गए, दर्शन मिल गया, तो इसको तुम साधन की सफलता मानो तो ये बेकार की बात होगी। क्यों? क्योंकि इसी पर साधक की दृष्टि अटक जाएगी, वो हर समय ऐसे ही सोचता रहेगा। फिर क्या होगा कि उसके संकल्प से, उसके मानस की बनावट के अनुसार कभी कुछ ऐसा हो भी गया तो क्या हुआ, कभी कभी एक झलक मिल गई और फिर वो छिप गई, तो कहाँ गया तुम्हारा ईश्वर प्राप्ति का अनुभव? ठीक है ना? वो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जीवन का विश्लेषण करके, व्यक्तित्व का विश्लेषण,
एनालिसिस करने की जो एक पृष्ठभूमि थी मेरी, उसमें महाराज की वाणी और साधन का फल एकदम फिट बैठ गया। क्या हो गया कि मैंने यह जाना कि जब साधक अपनी स्वेच्छा से जीवन की आवश्यकता को सामने रखकर परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लेता है और उनको अपना मान लेता है, तो उसके भीतर अपने में जो कमी महसूस होती थी, अभाव अभाव हर समय सताता रहता था, वह अभाव तत्काल ही मिट जाता है। ये किसका फल हुआ? ये ईश्वर विश्वास और संबंध को स्वीकार करने का फल हुआ। ये तो साधक की दृष्टि से हो गई, और ऊपर से देखो तो और क्या हुआ? तो और ये हुआ कि जब सत्य स्वीकृति आपने ली अपने लिए, तो जो परमात्मा नित्य निरंतर आप ही में विद्यमान रहते आए हैं सदा से, उन विद्यमान परमात्मा का एक प्रभाव आपके अनुभव में आ गया। उनके तो और बहुत से प्रभाव हैं, लेकिन जहाँ से अपने ईश्वर विश्वास का प्रभाव आरंभ हुआ था, जो श्री गणेश हुआ था, वो मैंने आपकी सेवा में निवेदन किया। महाराज जी ने कहा न कि इतनी तैयारी के पश्चात परमात्मा को सुनने से उसे मान लिया जाता है, परमात्मा उसका अभाव मिटा देते हैं। तो पहले अभाव मिट जाता है, फिर दुख मिट जाता है, फिर उनसे मिलना भी हो जाता है, फिर जीवन सरस भी हो जाता है। तो आज अपने लोगों के लिए पाठ कौन सा लेना है? हम सब लोगों को पाठ भी तो लेना है ना, केवल सिद्धांत तो नहीं सुनना है। ऐसा होता है, ये अनुभवी संत ने कह दिया। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे उस अनुभव को ग्रहण करूं? तो अब आप सोच करके देखिए कि जिस समय से आपने प्रभु की सत्ता को स्वीकार किया, उनकी आत्मीयता को स्वीकार किया, अपने को उनके प्रेमी बनाकर रखना पसंद किया, उस समय से लेकर अब तक के आपकी जो वर्तमान की दशा है, उसमें परिवर्तन आया है कि नहीं आया है, देखने की बात है। अभाव सताता है कि अभाव मिट गया? भीतर भीतर भरा हुआ लगता है कि सूना सूना लगता है? ऐसा देखना है। तो जब वस्तुओं और व्यक्तियों की आसक्ति में आदमी फंसा रहता है, तो आसक्ति का प्रभाव निरस्ता और अभाव, और ईश्वर विश्वास और भक्ति का प्रभाव है सरसता और पूर्णता। तो अगर भीतर भीतर सूना सूना लग रहा है, खाली खाली लग रहा है, बाहर की वस्तुओं से मिलने जुलने बोलने की आवश्यकता मालूम हो रही है, व्यक्तियों से बातचीत करने की आवश्यकता मालूम हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि मेरा ईश्वर विश्वास मेरे जीवन में सजीव नहीं हुआ। ठीक है ना? बिल्कुल सच्ची बात है। कभी कभी मुझे इतना दुख होता है, किसी किसी साधक के मुंह से मैं सुनती हूँ। एक साधक पति पत्नी आए और दोनों ही बहुत अच्छे पढ़े लिखे समझदार और पैसे वाले भी, तो उन्होंने कहा कि हम आपके पास रहेंगे और एकांत में रहेंगे, अपनी साधना में रहेंगे। पति ने बताया मुझे कि साधना के लिए मैंने घर बार छोड़ दिया है और बहुत अच्छी नौकरी थी, क्लास 1 पोस्ट था गवर्नमेंट में, तो दे सकते थे तो मैंने दे दिया। 2-4 दिन वे लोग मेरे पास नहीं आए। रहे अपनी साधना में। उसके बाद वो महिला निकल के आई मेरे पास भोजन दिन के बाद, कहने लगी कि माता जी अकेले अकेले रह के तो आदमी पागल हो जाए। तो मैंने मन में सोचा, अरे मेरी बहनी, मैंने कब कहा था कि तू अकेले बैठ, हमने कहा था। फिर मैंने उन लोगों को बैठा करके बातचीत किया, हमने कहा इसका अर्थ ये है कि जिस सत्य को तुमने स्वीकार किया, जिस साधना की लाइन को तुमने पकड़ा, उसने तुम्हारे जीवन का स्पर्श नहीं किया है, नहीं तो अकेलापन कैसे फील होगा, क्यों मालूम होगा कि मैं अकेले हूँ। वो तो वस्तुओं और व्यक्तियों का संबंध जो है, वो व्यक्ति के भीतर हृदय में नीरसता, शुष्कता, अकेलापन भर देता है। तो आसक्ति के कारण तुमको भीतर भीतर सूना लगता है, तो भ्रमवश तुम बाहर बाहर से बातचीत करके, काम धाम करके, घूम फिर करके अपने को बहलाना पसंद करते हो। नहीं तो सच्ची बात क्या है? सच्ची बात ये है कि जिसने सत्य को स्वीकार किया, तो उस स्वीकृति मात्र से उसके जीवन में ऐसी लगन लग जाती है कि अपने से भिन्न किसी की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक कसौटी ये मैं रखती हूँ अपने भाई बहनों के लिए, बहुत आत्मीयता की बात है, बहुत ही प्रियता की बात है, किसी की आलोचना की दृष्टि से नहीं, किसी साधक को छोटा समझ के नहीं, हम सभी प्रभु पंथ के पथिक हैं। बड़ा अच्छा होगा कि हम सबका सामूहिक संकल्प एक दूसरे को शक्ति प्रदान करता रहेगा, और अपने रास्ते पर हम जहाँ भी रहेंगे सब एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आज संत धाम में हम सभी इस पवित्र उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं। 22 तारीख को समारोह पूरा हो जाएगा, ये सारी मूर्तियाँ बिखर जाएंगी, जगह जगह पर चली जाएंगी। तो शरीर से भले हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं, परंतु एक संत की कृपा की छाया में हमने अपने को साधक करके स्वीकार किया, एक परमात्मा की प्रेम की गोद में हम लोगों ने जीवन धारण किया है, और उसी की कृपालुता, उसी की मंगलकारिता के आधार पर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इस दृष्टि से हम सभी भाई बहन एक हैं, और हम सबके हृदय में ये भाव होना चाहिए कि हे परमात्मा, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्रभु, हम सब भाई बहनों का कल्याण करो। तो इस सद्भावना में शरीर की दूरी से कोई बाधा नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? तो इसी भाव से मैं कह रही हूँ कि हम लोगों को अकेले में बैठ करके अपना नंगा चित्र अपने सामने रख करके देखना चाहिए कि मेरी स्वीकृति और मेरी साधना ने मेरे हृदय को स्पर्श किया कि नहीं किया। प्रभु हैं, हम कहेंगे कि आप इनकार करिए, कह दीजिए कि नहीं है, तो आप लोग कहेंगे कि ये कैसी बात कह रही है बहन जी, ये कैसे हो सकता है, हम ना कैसे कह दें। तो कहने के लिए तो हम ना नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा जीवन इस बात की ओर संकेत करता है कि मैं ना कह रही हूँ। कैसे? अब आप देखिए, अकेले अकेले इन सब बातों पर मैं विचार करती रहती हूँ, तो मुझको तरह तरह की बातें सूझती रहती हैं। अब देखिए कितने प्रकार के लोगों से व्यवहार करना पड़ा। अगर आप किसी से झूठ मूठ को बात बना रहे हैं, मन में है कुछ और मुख से बोल रहे हैं कुछ, क्या ये नहीं कहा जाएगा कि उस समय आपने उस सर्वव्यापी परमात्मा के अस्तित्व को इनकार कर दिया होगा जी? ठीक है ना? और नहीं तो भक्त क्या करता है, अपनी ही भूल से पीड़ित होकर के, अधीर होकर के भक्त कहता है काम उठले विनती करूं, काम उठले विनती करूं, लाज आवत है मोई, तू देखत अवगुण कियो कैसे भाऊं सोई। अब हृदय पर हाथ रख करके सोचो तो कि सत्य से भटक करके, सत्य से विचिन्न होकर के जब हम लोग कुछ करते हैं तो उस समय याद रहता है क्या कि वो मेरा सर्वज्ञ प्यारा, सर्वव्यापी प्यारा देख रहा है, याद आता है? अगर याद आता है तो हम लोग सत्य से हट करके कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और अगर याद नहीं आता है, अपने को बुद्धिमान सोच करके दूसरे की अजानकारी का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, तो जिस समय ऐसी प्रवृत्ति में लगा है कोई, उस समय ईश्वर के अस्तित्व को उसने इनकार कर दिया कि नहीं कर दिया? जी कर दिया। आप भक्त हो गए कि नहीं, प्रभु का नाम सुन के आपके अश्रुपात हो रहा है कि नहीं, कि भाव समाधि में आप डूबे हैं कि नहीं, कि आपके अहम का लोप हो गया है कि नहीं, ये तो पीछे की बात है, देखा जाएगा, विकास होगा तब ये बातें होंगी। लेकिन आज की अपनी प्रारंभिक दशा तो देखो कि हम सब लोग ईश्वर विश्वासी बनकर बैठे हैं, और सत्य वचन की जगह पर अगर मिथ्या वचन का प्रयोग कर रहे हैं तो जिस किसी से हम झूठ बोल रहे हैं उसके भीतर हमारा सर्वज्ञ प्यारा मौजूद है कि नहीं है? है तो उस भक्त की भांति क्या मेरा हृदय फटना नहीं चाहिए इस अपनी भूल से? का मुख ले विनती करूं लाज आवत है मोल, तुम देखत अवगुण कियो कैसे भाऊं सोई। ये पीड़ा होती है क्या? अगर होती है तो वह समर्थ तत्काल ही उसको परम पवित्र बना लेता है, देर थोड़ी लगती है, देर नहीं लगती है। जहां भीतर में अंतर में ग्लानी पैदा हुई कि हाय हाय ये मैंने क्या किया, अपने प्यारे के देखते देखते मैंने ऐसे वचन मुख से निकाले जो कि नहीं निकालना चाहिए था, अपने प्यारे की उपस्थिति में उनके इस प्राणी का तिरस्कार किया मैंने, समझा मैंने, कड़े वचन सुनाए मैंने, हाय हाय मैंने ये क्या किया। तो जिस समय ईश्वर विश्वासी के हृदय में ये ग्लानि उत्पन्न होती है कि हाय मैंने तो जो नहीं करना चाहिए था तो कर डाला, अब क्या करूं, तो जिस समय अंतर में अपनी भूल के लिए ग्लानि पैदा होती है उसी समय वह अंतर्यामी प्रभु उसको साधु के समान पवित्र बना देते। पता नहीं ईश्वरवाद का क्या अर्थ लिया जा रहा है, खास वेशभूषा हो गई तो ईश्वरवादी हो गए, खास प्रकार का रहन सहन ढंग बना लिया तो ईश्वरवादी हो गए। तो भाई वेशभूषा रहन सहन का ढंग तरीका ये सब तो बाद की बात है, बाहर की बात है, अंतर की दशा तो देखो कि जिस विश्वासी का विश्वास मैंने धारण किया उसने मेरे हृदय को स्पर्श किया कि नहीं। अगर उस विश्वास से मेरा हृदय जुट गया है, अगर मेरे विश्वास में इतनी सजीवता है तो मेरे हृदय में कोमलता आ जानी चाहिए थी, मधुरता आ जानी चाहिए थी, गैरियत की भावना मिट जानी चाहिए थी, अहम का अभिमान गल जाना चाहिए था, हृदय की कठोरता घट जानी चाहिए थी, ठीक ही नहीं थी? तो एक भोली भाली साधक महिला बहन हमारी एक दिन आकर के मुझसे कहने लगी, किसी संत के बारे में चर्चा हम लोगों ने की थी, तो संत की घटना ऐसी है कि वे प्रभु की आराधना में भोर में 4 बजे बैठे थे, तो जिनके हृदय का तार परमात्मा के साथ जुट गया है, उनकी याद में इतना प्रेम उमड़ता है कि समय और स्थान का भाव खत्म हो जाता है। शरीर का भाव नहीं रहा तो टाइम एंड प्लेस कंसेप्शन रहेगा कैसे, काल स्थान खत्म हो गया। बहुत देर हो गई, जो काम प्रतिदिन वे किया करते थे वो नहीं कर सके, तो जब उनके ध्यान में आया तो वे दौड़ करके गए कि आज तो बड़ी देर हो गई, मुझे समय पर पहुंचना चाहिए था, यह काम मेरे जिम्मे था, मुझको करना चाहिए था, सबको बड़ी तकलीफ हुई होगी। दौड़ करके गए देखने पूछने कि किसने किया होगा, कैसे काम हुआ होगा, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि तुमको हो क्या गया, तुम ठीक समय पर आए तो थे, तुमने सब काम किया, तो ये समझ गए, बड़े व्याकुल हो गए कि अरे ये कैसी मेरी पूजा, मेरे प्यारे को मेरी जगह पर झाड़ू लगाना पड़ा, बिस्तर बिछाना पड़ा, टोकरी उठानी पड़ी, बहुत व्याकुल हो गए। ये कथा मेरी उस बहन ने सुन लिया था, तो एक दिन आई मेरे पास और कहने लगी, दीदी एक बात बताओ मुझे। मैंने कहा बोलो भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा, उन संत का नाम लिया, हम लोग जानते हैं खूब परिचित संत है, तो उनका नाम लिया और कहने लगी कि वो तो भूल गए थे तो भगवान ने उनकी जगह पर झाड़ू लगा दिया, सब काम कर दिया, और दीदी मैं तो सो गई थी तो मेरा काम तो भगवान ने किया ही नहीं। हृदय का भोलापन है, बहुत भोलापन है, लेकिन हंसी आ गई मुझे भी, जैसे आप सभी हंस रहे हैं। भक्ति का अगर ये साधना रखते हैं तो भक्ति का अगर ये अर्थ कोई लगावे कि मैं खो जाऊं, मुझे नींद आ जाए और भगवान मेरी जगह पर सब काम कर दें, तो ये तो बड़ी भारी भूल होगी। भक्त तो ऐसा नहीं करते हैं, भक्त तो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी के लिए आप लोगों ने सुना होगा कि रामायण की प्रतियां लिख लिख करके वो रखते थे कुटिया में, तो पुराने उस समय के समसामयिक पंडित लोग जो थे उनमें बड़ा द्वेष पैदा हो गया कि इसका बड़ा नाम हो रहा है, तो उन्होंने चोरों को भेज दिया रात में कि जाकर के कुटिया में से उनकी लिखी हुई प्रति चुरा लाओ। ये चोर जब वहां गए तो जैसे ही ये लोग पहुंचे, तुलसीदास जी तो सो रहे थे और कुटिया के दरवाजे पर दोनों तरफ श्याम गौर दोनों भैया पहरा दे रहे थे, बड़ा प्रकाश फैला था। सच्ची घटना है, ये कल्पना नहीं है, बड़ा प्रकाश फैला था। तो चोर वहां जाए कैसे, वहां तो जा नहीं थे, पहुंच नहीं सकते थे, उस प्रकाश को देख करके सहन नहीं कर सकते थे, ये कौन है, ये कैसा प्रकाश है। तो वे तो लौट गए, दूर से ही लौट गए, और उनके ध्यान में कुछ आए है ना। अब उस दर्शन का एक प्रभाव हुआ, उनके भीतर से बुरी भावनाएं मिट गई, तो होगा ही नहीं, सूर्य का उदय होगा तो प्रकाश में अंधकार तो मिटेगा ही। तो वे चोर गलत उद्देश्य लेकर गए थे, तब भी उस परम प्रकाशक प्रभु का प्रकाश उनको देखने में आ गया तो उतने ही से उनका हृदय बदल गया। दूसरे दिन वे दोनों गोसाई जी के पास आए, अपने नागरिकों के वेश में आए और आकर के इनके चरणों में गिर गए, महाराज हम लोगों को क्षमा करिए, बड़ी भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई, क्या हो गया भाई क्या हो गया। तो उन्होंने सब कथा सुना दी कि अमुक अमुक पंडित ने मुझसे हम लोगों को ऐसा कहा था और हम लोग चोरी करने आए, तो महाराज क्या बताएं, आपकी इस कुटिया के दरवाजे पर तो बड़े सुंदर सुंदर मनोहर श्याम गौर दो बालक खड़े थे और इतना प्रकाश फैल रहा था, इतना प्रकाश फैल रहा था पंडित जी गोस्वामी जी कि हम लोगों से तो सहन नहीं हुआ, तो हम लोग भाग गए। तो आज से अब से हम लोग कभी भी चोरी नहीं करेंगे, गोस्वामी जी हम लोगों को अपना शिष्य बनाइए। तो गोस्वामी जी शिष्य तो क्या बनाएंगे, और गोस्वामी जी को इस बात का हर्ष तो नहीं हुआ, बड़े दुखी हो गए। अरे अरे अरे, मेरे सरकार को इन पोथियों के लिए कष्ट उठाना पड़ा, पहरा देना पड़ा, अब क्या करेंगे इसको रख के, अब क्या करेंगे इसको रख के। इतने अधीर हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने उस समय के समसामयिक जो बादशाह थे, अकबर बादशाह, उनके मंत्री थे राजा टोडरमल जी, टोडरमल जी से गोस्वामी जी की मित्रता थी और वो बादशाह के मंत्री थे, उनके पास सुरक्षा का बहुत इंतजाम था। गोस्वामी जी ने एकदम अपनी लिपियों को, लिखी हुई रामायण की प्रतियों को उठा करके ले जाके राजा टोडरमल को दिया, मित्र को, कि तुम इनको संभाल करके रखना, और कुटिया एकदम खाली कर दी। कितना विरह उपजा, कितनी व्याकुलता हुई उस भक्त हृदय को, कितनी पीड़ा हुई कि हाय हाय ये मैंने क्या किया, इनके लिए सरकार को पहरा देना पड़ा, हक उठाना पड़ा, अत्यंत व्याकुल हो गए। तो भक्त का जो हृदय होता है वो अपने प्यारे को प्यार देने के लिए होता है, ऐसा नहीं कि मैं सो गई तो तुम क्यों नहीं आए पहरा देने, सो नहीं है, ये भक्ति की बात नहीं है। तो मैं आपकी सेवा में यह निवेदन कर रही हूँ कि खास खास प्रकार की जो धारणा बना करके बैठ जाते हैं भाई बहन कि मेरी भक्ति का ये फल होगा, तो वो अपनी बनाई हुई धारणा जो है वो भक्ति की वृद्धि में बहुत बाधा पहुँचाती है। इसलिए धारणा बना के मत बैठो, उनके होकर रहना पसंद करो, फिर देखो उनकी क्या मौज होती है, बड़ा आनंद होगा, बड़ा आनंद होगा जब हम लोग अपनी तरफ से अपने को बिल्कुल उनकी प्रसन्नता पर छोड़ देंगे कि महाराज अब इस दीनहीन तुच्छ नगण्य जीवन को आप जैसे चाहे वैसे अपनी विभूतियों से संपन्न करें, अपनी प्रसन्नता के लायक बनावे, तो अपना संकल्प छोड़ दो, अपनी कल्पना छोड़ दो। और महाराज मुझको समझाने के लिए मेरी भाषा का प्रयोग करते तो कहते कि देख जी दिमाग में भगवान का कार्टून मत बनाना, कार्टून अखबारों में आप लोगों ने कार्टून देखा होगा, व्यंग चित्र कार्टून का अर्थ होता है। तो कहते देख जी तुम दिमाग में भगवान का कार्टून मत बनाना, प्यारे बड़े रसिक हैं, प्यारे बड़े कौतुकी हैं, प्यारे बड़े कृपालु हैं, बड़े प्रेमी हैं, तुम अपनी तरफ से केवल एक बार अपने को छोड़ दो, फिर देखो कि इस मिट्टी से वे कितना सुंदर खिलौना गढ़ लेंगे, फिर उससे खुद को रिझाएंगे और तुमको भी रिझाएंगे। ईश्वर भक्ति का यह अर्थ है जो स्वामी जी महाराज के अनुभव से सिद्ध है और जो मानव सेवा संघ के सिद्धांत के अनुरूप है। अब समय तो खत्म हो गया, कथा तो खत्म होती नहीं है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो सरस कथा जीवन को पवित्र करे इसी भावना से अब सब भाई बहन थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो गए। सत्संग की बैठक में बातचीत चल रही है। आश्रम में वट वृक्ष के नीचे बातचीत हो रही थी। तो प्रश्न उठा है उसमें परमात्मा के याद आने की बात से। तो स्वामी महाराज ये सलाह दे रहे हैं कि भाई मरे हुए कुटुंबी जनों की याद आती है और मौजूद परमात्मा को याद करना पड़ता है और उसमें भी सफलता नहीं मिलती है, ऐसा क्यों? ऐसा सोचो। तो सोचने से साफ विदित होता है कि जिनको हमने अपना माना उनकी याद स्वभाव से आती है, इसलिए ईश्वर विश्वासी साधक जो उनकी स्मृति को जीवन बनाना चाहते हैं, उनकी याद में ही रहना जिनको पसंद है, उनको क्या करना चाहिए? तो उनको ये भी करना चाहिए कि परमात्मा को अपना मानें, पसंद करें। आधुनिक मनोवैज्ञानिक भाषा में बातचीत होती है तो यह कहा जाता है कि जहां जहां हमारा इंटरेस्ट है, अभिरुचि है, वहीं वहीं मन जाकर ठहरता है। इसको तो आपने स्वयं अनुभव किया होगा, जो जो बातें अपने लोगों को रुचिकर लगती हैं, तो रुचिकर बातों में जाकर के मन ठहरता है कुछ समय के लिए, और जिसमें आपकी रुचि नहीं है उसमें मन नहीं जाता। तो जो पसंद आवे, जो रुचिकर लगे, जहां हमारा इंटरेस्ट हो उसी में जाकर के मन ठहर जाएगा, टिक जाएगा। तो संत महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा को पसंद करना, उनको अपना मानना, यह तो हमारा आपका अपना पुरुषार्थ है, स्वधर्म है। और मेरी इस पसंदगी से उनकी याद स्वभाव से आने लग जाएगी, यह उस पुरुषार्थ का, उस स्वधर्म के पालन का फल है। तो उनको हम पसंद करें यह मेरा स्वधर्म है। उनकी सत्ता को स्वीकार करके उनसे आत्मीय संबंध माने यह हमारा स्वधर्म है। और मेरी इस मान्यता और पसंदगी की मान्यता से उनकी याद आने लग जाए यह स्वधर्म पालन का फल है, ऐसा वे बता रहे हैं। तो और बात सही है, आपने देखा होगा, मैंने बहुत अच्छी तरह से इसका अनुभव किया है कि सचमुच जो अपना नहीं है और अपने में नहीं है, सदैव और सर्वत्र नहीं है, सबकाल सर्वस्थान में, ऐसा जो नहीं है उसकी याद आने पर मनुष्य के जीवन में अभाव और निरक्षता उपजती है। जो प्राप्त नहीं है, मौजूद नहीं है, अपने में नहीं है, उसकी याद अगर आएगी तो अपने में अभाव भरेगा। क्या करें, वो कब मिलेगा, कहाँ है, कैसा है? जो अपना नहीं है उसकी याद का ये फल होता है। और परमात्मा जो सभी का अपना है और सभी में नित्य निरंतर विद्यमान है, उसको जब आदमी पसंद कर लेता है और उसकी याद जब आती है तो बड़ा चमत्कार होता है ईश्वर विश्वासी के व्यक्तित्व में। यह तो मनोविज्ञान की भाषा है, मैं व्यक्तित्व बोल रही हूँ। और दूसरी भाषा बोलूँ तो कहेंगे कि उसका बड़ा चमत्कारपूर्ण प्रभाव होता है हमारे आपके अहम में। क्या होता है कि जो नित्य विद्यमान है उसकी उसको जब पसंद किया जाता है, उसकी पसंदगी से आत्मीयता के संबंध से जब उसकी स्मृति जागृत होती है, जो नित्य विद्यमान है उसकी याद आने मात्र से उसकी उपस्थिति से जीवन भरने लगता है। तो एक तो है अप्राप्त और उसकी याद आई तो अपने में सीमापन आ गया, और एक है नित्य विद्यमान, भीतर बाहर सब तरफ हर तरह से भरपूर। तो उसकी याद आ गई तो उसकी याद आने मात्र से जीवन भरने लगता है, अभाव मिटने लगता है, सरसता बढ़ने लगती है। और वो रस क्योंकि जीवन रस है, अविनाशी रस है, हमारी अपनी आवश्यकता के अनुरूप है, इसलिए उस रस की वृद्धि से शेष सबकी विस्मृति हो जाती है। महाराज जी ने एक जगह पर एक वाक्य लिखा है बड़ा अच्छा। एक दिन हम लोग विवेचन कर रहे थे कि संसार के साथ रहने पर भगवान की याद आती है और भगवान के साथ रहने पर संसार को भूल जाता है आदमी। तो ऐसा तो उसका सहज एक प्रभाव बताया, बहुत बहुत सच्ची बात है और अनुभव करने योग्य बात है। जिन अनुभवी जनों ने अनुभव किया उन्होंने अपना इसी प्रकार का अनुभव बताया है। तो बीच में एक भाई ने प्रश्न कर दिया कि परमात्मा को पसंद करने में और उनको अपना मानने में और उनकी स्मृति में रहने में जो हमारे पुराने संस्कार हैं वे बाधा डालते हैं। तो इस पर प्रश्नोत्तर हो रहा है। महाराज जी ने कहा कि ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है, संसार बाधा नहीं डाल सकते हैं। पुराने किए कराए का जो निशान सब बन जाता है, स्नायु में ट्रेस बन जाते हैं, मेमोरी ट्रेस सब बन जाते हैं, भोगे हुए सुखों का प्रभाव, अतृप्त वासनाओं का प्रभाव, नए पुराने ये सब जो वहाँ पर अंकित हैं, तो उनका रिवाइवल होता रहता है, उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, बार बार वे सामने आते रहते हैं इस प्रलोभन में कि पुनः उसी सुख को दोहराया जाए। तो स्वामी महाराज ने कहा कि अगर कोई पुराना संस्कार भोगे हुए सुख के प्रभाव से जो राग अंकित हो गया है वो अगर तुम्हारे सामने आ भी जाए तो अगर तुम उसका समर्थन नहीं करोगे तो जबरदस्ती तुम्हारे सिर पर नहीं चढ़ेगा। और उदाहरण के लिए बता दिया कि जैसे चाय पीने की आदत है, बहुत मामूली लेना चाहिए, चाय पीने की आदत है और तुमको अभी नहीं पीना है, तो अगर कोई एक प्याला ला करके तुम्हारे सामने रख दे तो पीने का जो नुकसान है वो चाय को देखने से तो नहीं हो जाएगा जी, नहीं हो जाएगा। तो जैसे बाहर दिख रहा था वैसे भीतर अगर दिख गया तो घबराते क्यों हो? बाहर वाला दृश्य ही ना भीतर अंकित होता है भाई जी। अभी देख रहे हैं तो अथवा पहले का देखा हुआ है तो, या कभी का किसी भी ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से किसी प्रकार का सुख भोगा हुआ है अथवा भोगने की इच्छा रखते हैं तो उसी का चित्र बनता है, बाहर देखो अथवा भीतर देखो। तो महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई चित्र तुम्हारे मस्तिष्क में उठ के आ गया प्रत्यक्ष सामने चेतन स्तर पर और तुम्हें दिख गया तो उसका समर्थन नहीं करोगे और उस प्रवृत्ति में पुनः अपने को नहीं लगाओगे तो वो फिर तुम्हारा कोई नुकसान कर सकता है। नुकसान तो नहीं करेगा तो दिखेगा और उसको इनकार कर दो, उसे पकड़ो मत, उसको रखो मत संभाल करके। तो बीच बीच में भगवत भजन के बीच में, याद के बीच में अगर ऐसी कोई बात होती है तो उससे साधक समाज को घबराना नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं। और तीन वाक्य अभी महाराज जी ने बताए, समर्थन नहीं करोगे, हाँ नहीं भरोगे, ये कहा, और लड़ोगे नहीं उससे, ये कहा, और एक और कुछ कहा,
देखते
रहो। हाँ, तो उससे लड़ो मत और उसका समर्थन मत करो, हाँ भी मत करो और उससे संघर्ष भी मत करो, तो वो अपने आप से नाश हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। और आगे उसी में प्रश्न करने वाले लोग प्रश्न करते जा रहे हैं, स्वामी महाराज उत्तर देते जा रहे हैं। खास बात जो है वो मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया, यही वो कह रहे हैं कि बीच बीच में अगर पुरानी बातें आती हैं तो उनके आने से कोई नुकसान नहीं होता है, अगर उनको आने से रोकना चाहोगे तब नुकसान होगा, अगर उनके उठने पर उनका समर्थन करोगे फिर उस प्रवृत्ति में सम्मिलित होकर भोग जनित सुख लेना पसंद करोगे तब नुकसान होगा, और हाँ भी मत भरो और उनसे लड़ो भी मत, संघर्ष भी मत करो, तब कोई नुकसान नहीं हो सकता है। और उनके उनके डर से डरना भी नहीं चाहिए। अब जब उन प्रवृत्तियों को अपने को दोहराना ही नहीं है तो जो उनका मेमोरी स्ट्रेस पड़ा हुआ है स्नायु मंडल में वो अपने आप से आ भी जाएगा चेतन स्तर पर और अपने आप से खत्म भी हो जाएगा। आगे फिर उसी में कह रहे हैं कि कभी कभी साधक जन से भूल होती है। क्या भूल होती है? कि पुरानी जो मेरी पसंदगी थी सुख भोग की, उस पसंदगी के कारण से अनेक प्रकार के राग अंकित हो गए, और जब शांति काल में वे उठ करके मस्तिष्क में आते हैं और मन में हलचल मालूम होती है, तरह तरह के विकारों के चित्र सम्मुख आते हैं, तब क्या करता है आदमी कि अपने आप से आने वाले उन उन चिंतनों को करने वाले चिंतन से दबा करके मिटा के उसको खत्म करना चाहता है आदमी। तो व्यर्थ चिंतन उठता है मन में तो कोई कोई साधक उसको सार्थक चिंतन से दबा देने की चेष्टा करते हैं कि संसार की याद आ रही है तो जल्दी जल्दी भगवान का नाम लेकर के संसार की याद को दबा दो। यह है मनोवैज्ञानिक तथ्य के विरुद्ध बात है। ये महाराज जी ने कहा कि होने वाली क्रिया को किसी करने वाली क्रिया से मिटाना चाहते हो तो ये संभव नहीं है। बिना चाहे बिना किए अपने आप व्यर्थ चिंतन उपज रहा है तो अपने आप जो उपज रहा है उसको करने वाले चिंतन से तुम दबा सकते हो थोड़ी देर के लिए, अल्पकाल के लिए, लेकिन मिटा नहीं सकते। ये चर्चा चल रही है। तो होना क्या चाहिए? तो होना तो चाहिए था उल्टा। कौन सी बात होनी चाहिए थी? कि सत्य की स्वीकृति के आधार पर, स्वधर्म के पालन के आधार पर, प्रभु की पसंदगी और उनके प्रेम की अभिलाषा के आधार पर, उनके माने हुए आत्मीय संबंध के आधार पर, उनका चिंतन, उनका ध्यान, उनकी याद स्वतः आनी चाहिए थी। और जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया आपको कि उनका ध्यान, उनका चिंतन, उनकी याद आने मात्र से उसमें इतनी सजीवता और इतनी सरसता होती है कि उस रस के प्रभाव में पहले के सब जमे हुए राग और विकार खत्म हो जाते हैं, स्थिति हो जाती है। तो होना चाहिए था स्वभाव से ये कि हमने सत्संग किया होता, सत्य को स्वीकार किया होता स्वधर्म का पालन किया होता तो आज जिनको याद करने पर भी याद नहीं आता है उनकी स्मृति स्वतः जागृत हो गई होती। स्वभाव से ये होना चाहिए था, लेकिन भूल के परिणाम से क्या हो गया कि मैंने भूल काल में वस्तुओं को महत्व दिया, व्यक्तियों को महत्व दिया और दृश्य के संयोग से सुख भोगना पसंद किया, उनके प्रभाव से अनेक राग अंकित हो गए। तो उनका उपजना, उनका चेतन स्तर पर आना, उनके कारण से मस्तिष्क में हलचल मचना, ये मालूम होता है कि स्वाभाविक हो गया है ये भूल का परिणाम। तो क्या करना चाहिए, भूतकाल में जो हो गया उसको पकड़ के बैठे मत रहो, भूतकाल कैसे भी जीता हो अब वर्तमान में आगे से किसी प्रकार के सुखभोग की प्रगति में अपने को शामिल नहीं होना है। तो क्या होगा, फिर नया कोई राग उत्पन्न नहीं होगा। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि जो सदा सदा से अपना है उसके अपनेपन को स्वीकार करना चाहिए। और पसंदगी की बात ज्यादा जोरदार बताई महाराज जी ने। फिर क्या होता है कि ईश्वर विश्वास के साधकों में एक संदेह हो रहता है, परमात्मा दिखाई तो देते नहीं है, समझ में आता नहीं है, जान पहचान कभी हुई नहीं, प्रमाण कुछ मिलता नहीं, तो उनको पसंद कैसे करें। तो पसंदगी की बात और उनसे आत्मीय संबंध स्वीकार करने की बात और उनके होकर रहने की बात, उनके प्रेम को ही जीवन मानने की बात, यह है तो बहुत आवश्यक। इसके बिना विश्वास करके साधक के जीवन में ईश्वर विश्वास सजीव नहीं होता है, इसकी बहुत जरूरत। लेकिन करने लग जाता है आदमी कि कैसे करें कैसे करें। तो एक दिन की चर्चा है, स्वामी महाराज का कुछ लिखा हुआ वाक्य मैं आप लोगों को सुना रही थी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि परमात्मा है और उससे मेरा नित्य संबंध है। इन वाक्यों को सुनने के लिए कितनी तैयारी चाहिए, कितनी भूमिका चाहिए अपने जीवन में। और तब उसने उन्होंने बताया कि इसकी भूमिका में क्या होना चाहिए, सारा संसार अपने को दुख रूप दिखाई देना चाहिए। सजग व्यक्ति जो होते हैं वे केवल व्यक्तिगत दुख तक ही सीमा नहीं रखते हैं, वो जहां भी कहीं दुख दिखाई देता हो वो सब दुख को सामूहिक रूप से ग्रहण करके और अर्थ निकालते हैं। तो जहां भी कहीं निर्माण परिवर्तन विनाश का क्रम चल रहा है, काल की अग्नि में सब जल रहा है, ऐसा सचेत महापुरुषों ने जिन्होंने अनुभव किया, जिनको सारा संसार दुखरूप दिखाई दिया, ऐसी जिनकी तैयारी है उनको यह सुनने का अधिकार है कि केवल उसी की सत्ता है और केवल उसी से मेरा नित्य संबंध है। तो सुनते तो हम सभी हैं, आरंभ तो हम सभी करते हैं, लेकिन एक सुनना ऐसा होता है कि वो भी अविनाशी परमात्मा को बिना देखे बिना जाने भी स्वीकार कर लेता है। और जो अपनी असमर्थता से अत्यंत पीड़ित हो गया है वह भी सुने हुए सर्वसमर्थ परमात्मा को अपना कहकर, अपना हितैषी कहकर, अपना संबंधी कहकर, अपना मित्र साथी कहकर स्वीकार कर लेता है। तो कुछ पृष्ठभूमि में विशेषता होनी चाहिए कि जिस पर यह स्वीकृति सजीव हो जाती है। और इसकी सजीवता में बड़ी विलक्षणता है। क्या विलक्षणता है कि मैं जो इस क्षण में यहाँ पर बैठकर आप सभी भाई बहनों से बातें कर रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ आप सुन रहे हैं, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कहने सुनने की क्रियाएं चल रही है, लेकिन इसी समय में, इसी काल में, इसी स्थान पर अंतर्यामी रूप से भीतर बाहर वर्तमान महात्मा विद्यमान तो है, लेकिन नित्य विद्यमान उसकी विद्यमानता का अनुभव अपने लोगों को नहीं हो रहा है। तो बहुत प्रकार की चर्चा चल रही है। स्वामी जी महाराज ने किसी सत्संग का प्रसंग एक बार सुनाया, तो सुनाया कि एक बड़े महात्मा परमात्मा के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे थे, टेप में है, उस दिन हम लोगों ने सुना था। बता रहे थे परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा ऐसे हैं, और ऐसी सब बातें हो रही थी। तो स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि अरे भाई, जो नित्य विद्यमान है उसका वर्णन करोगे कि उससे मिलोगे? मिलना चाहिए ना। जो नित्य विद्यमान है उसका चिंतन करोगे कि उसको प्यार करोगे? चिंतन तो उसका करो जो अप्राप्त है। भाई कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये करना है, वो करना है, वो करना है, उसका चिंतन क्या करोगे भाई? जो नित्य विद्यमान है उसको तो प्यार करना है, उसका चिंतन क्या करना है? और जो सर्व काल में सर्वत्र विद्यमान है तो उसको ढूंढने जाओगे? ढूंढने जाने की तो बात नहीं है, तो उसका वर्णन करोगे कि उससे मिलोगे? कोई अपना परम मित्र बहुत दिनों के बाद कभी सामने आ जाए, तो आ जाएगा तो प्रेम पूर्वक उससे मिलिएगा कि उसके बारे में सोचिएगा कि वो ऐसा है, ऐसा है, कैसा है, कैसा है? तो वर्णन तो तब तक हो सकता है कि जब तक मिलने वाला न हो तो सोचते रहो ऐसा है, ऐसा है, कैसा है। तो बड़ी आवश्यक बात यह है कि उनकी सत्ता की स्वीकृति, और वो भी अधूरा ही रह जाता है केवल सत्ता की स्वीकृति मात्र से। यह बात तो मैं अपने द्वारा, अपने उदाहरण से अच्छी तरह से जानती हूँ, आप भी इसको अनुभव कर सकेंगे कि केवल सत्ता स्वीकृति मात्र से काम नहीं बनता है। वो है, और भले ही उसकी महिमा तो जानो अथवा न जानो, है और अपना है। तो सत्ता की भी स्वीकृति होगी और नित्य संबंध की भी स्वीकृति होगी। तो इस स्वीकृति का सजीव परिणाम अपने लोगों के जीवन पर होना चाहिए, और वो जब होगा तो चिंतन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप उसकी याद आएगी। और जो सत्य है वह रस रूप भी है, और हमारे मस्तिष्क की जो विकृत दशा है, ये विकृत दशा में कहती हूँ, क्यों कहती हूँ कि जो वस्तुएं कभी भी किसी को संतुष्ट कर नहीं सकती, उन वस्तुओं को महत्व देना और उनके बारे में सोचना, तो विकृति ही पड़ जाएगी। स्वाभाविक का क्या कहा जाएगा, जिसकी याद मात्र में सारी सृष्टि डूब जाती है, वो तो दूर मालूम होता है, कठिन मालूम होता है, और जिसको याद कर करके, जिसका चिंतन कर करके अनेक जन्म बर्बाद कर दिए, फिर भी उसी के पीछे पड़े रहो, तो ये नॉर्मलिटी तो नहीं है, तो विकृति मालूम होती है। तो इस तरह की बातें जो है जीवन में, वो अपनी भूल से उत्पन्न हो गई है। ये भूल का ही परिणाम है, यह स्वाभाविकता नहीं है। स्वाभाविकता ऐसी नहीं होती कि जो आपको अप्रिय लगे, जो आपको पराधीन बना दे, जो आपको असमर्थ बना दे, जो जीवन में नीरसता को भर दे, और उसी के परिणाम स्वरूप ये चित्त की और मन की चंचलता, अस्वस्थता, दुर्बलता सब पैदा होती रहती है। तो संत ने उनका परामर्श दिया कि अपनी भूल हम लोग मिटाएं। भूल क्या है कि जिस संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, जो तुम्हारे पास तक पहुंच ही नहीं सकता, उसको महत्व मत दो। आता है सामने, दिखता है, उसको जब तक दिखाई देता है तब तक उसकी सेवा करो, उसका भला मनाओ। दिखता है यह भी एक एक अस्वाभाविक दशा ही है। क्यों? क्योंकि मुझ में राग है तब तक दिख रहा है संसार, जब तक मुझ में संकल्प है तब तक दिख रहा है। तो ये साधन काल की बात है कि दिखाई दे तो उसे अपने लिए न मानना, अपना न मानना, और फिर भी उसके प्रति सद्भाव रखना और सेवा करना। तो इससे तो पुराना जमा हुआ राग मिटेगा, और जो सदा सदा से है उसको पसंद करना, उसको अपना मानना, तो उसकी स्मृति जागृत होगी। तो राग की निवृत्ति से शांति मिल जाती है, और भगवत स्मृति की जागृति से रस की अभिव्यक्ति हो जाती है। फिर साधक को कुछ भी करना शेष नहीं। ऐसा यह एक विवेचन है। भूल हो जाती है हम लोगों से। एक जगह पर महाराज जी ने बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है, उसमें पढ़ रही थी मैं, ऐसे प्रवचन के बीच में कहीं से मैंने नोट कर लिया होगा, हमारे पास रखा हुआ है। तो कई वाक्य थे, अपने लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, याद रखने से काफी सहायता मिलेगी। एक हिस्सा है, जो पूर्ण है उसी में प्रेम प्रवाहित होता है, जो अचाह है जिसमें भोग और मोक्ष की चाह नहीं है उसी में प्रेम ठहरता है। प्रेमियों में जो प्रेम भासता है वह पूर्ण के प्रेम की छाया है। मनुष्य अचाह होने के कारण अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण के प्रेम का पात्र बन जाता है, तभी उस पर पूर्ण के प्रेम की छाया पड़ती है। प्रेमी अर्थात जिसके जीवन में अपना सुख न हो, जहाँ अपने सुख की गंध नहीं वहाँ दुख कहाँ से सताएगा। जो अचाह है जिसमें भोग और मोक्ष की चाह नहीं है उसी में प्रेम ठहरता है। और आगे बताया कि प्रेमियों की भाषा में चाहने वाले को चाहना पशुता है। प्रेमियों की भाषा में चाहने वाले को चाहना पशुता है। अब जिस समय यह वाक्य मेरी दृष्टि में आया तो एकदम ऐसा लगा कि भटकने वाले सब इसी पॉइंट पर अटके हुए हैं। चाहने वाले को चाहना, जिसमें अपूर्णता है, जिसमें कामनाएं हैं, जो खुद ही कुछ चाहता है, उसको अगर मैं पसंद करूं तो यह पशुता है। ये उनकी भाषा है, भाई अब उनको कौन मना करे, वो तो कह ही सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा सोच करके देखिए, ऐसा सोच करके देखिए कि विश्वास को हम लोगों ने पसंद किया। जो विश्वास सदा के लिए निभ नहीं सकता उसकी जगह पर ईश्वर विश्वास को हम लोगों ने पसंद किया, और चाहते हैं कि मन की चंचलता और चित्त की विकृतियां सब मिट जाएं और वहां पर केवल ईश्वर का ध्यान रह जाए, उन्हीं की याद रह जाए, उन्हीं के प्रति प्रियता रह जाए। तो महाराज जी सलाह देते हैं कि अगर ऐसा तुम पसंद करते हो तो पुरुषार्थ करो, स्वधर्म का पालन करो, और उस रूप में क्या करना है कि भाई और कुछ पसंद करने के लायक नहीं है, और किसी से जीवन की पूर्ति नहीं होती है, और बिना किसी आधार के अपने से रहा मिल जाता है। तो संत जनों की वाणी सुनकर, गुरु के वाक्य सुनकर, ग्रंथ के वाक्य पढ़कर, उस बिना देखे बिना जाने अनंत परमात्मा को अपने जीवन का आधार बनाना पसंद करें। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है कि अहम रूपी अणु में अपने को परिवर्तित करके वस्तुओं की आसक्ति की जगह पर भगवत अनुराग में परिवर्तित होने की क्षमता उसमें है और वो क्षमता काम करती रहती है। आरंभ कहाँ से होता है? उस जीवन की पसंदगी से। सजीवता कैसे आती है? उसके विरुद्ध जो बातें हैं उनको छोड़ देने से। बस इतनी सी बात है। अब जिसको जैसे सूझे, जहाँ पसंद आए, जैसे फिट बैठे वैसे करो भाई। जोर जबरदस्ती करने से पुराने व्यर्थ चिंतन दब जाएंगे और ईश्वर की स्मृति जागृत हो जाएगी। ये जोर जबरदस्ती की बात नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविकता की बात है। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बहुत आशा रहती है जीवन में। आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत उपयोगी बात है कि आप सिद्ध महापुरुष कब बनेंगे ये तो भविष्य बताए, अपनी अपनी आवश्यकता की तीव्रता बताए। लेकिन सच्ची बात ये है कि ईश्वर तत्व के समान और कुछ ठोस बात मनुष्य के जीवन में हो नहीं सकती। और उनमें विश्वास करना और उनकी आत्मीयता को स्वीकार करना, इसके समान और कोई साधना बन नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता है। किस आधार पर मैं कहती हूँ कि संपूर्ण अहम बल करके प्रेम के धातु में परिवर्तित हो जाए, उसके पहले साधन के पथ पर कदम रखने मात्र से, इस स्वीकृति और विश्वास को स्वीकार करने मात्र से अपने ही भीतर में ऐसा अद्भुत परिवर्तन आरंभ हो जाता है कि भगवान अपना विविध रूप धारण करके आपकी आंखों के सामने खड़े हो जाएंगे। कब खड़े हो जाएंगे, किस रूप में आएंगे, ये तो वो जाने, हमको नहीं मालूम है। लेकिन जो साधक इस विश्वास और इस आत्मीयता को धारण करेगा जीवन में, तत्काल ही एक प्रतिक्रिया तो ये होती है कि उसका अनाथपन मिट जाता है। फिर उसे किसी काल में कभी ऐसा भाषित नहीं होता कि मैं अकेला हूँ, असहाय हूँ। ये हो जाता है अपने आप। ये आदमी की बहादुरी नहीं है, ये उनकी उपस्थिति का प्रभाव है। आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं था? तो पहले इसलिए नहीं था कि आपने माना नहीं था। तो न मानो तो अत्यंत रहस्यमय ऐसे छिपे हुए कि बुद्धि लगा लगा करके थक जाओ, कहीं कुछ पता ही नहीं चलेगा। बड़ा विचित्र खेल है मनुष्य के जीवन का। बड़ी सुंदर रचना है, बड़ी अच्छी प्लानिंग है, योजना बड़ी सुंदर है। क्या है कि अगर आप इस बात को स्वीकार करने लग जाए तो तत्काल परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। कैसे हो गया कि जिसको आपने स्वीकार किया वह नित्य विद्यमान है, पहले ही से है। तो है और सत्य है, समर्थ है, सर्वज्ञ है और प्रेम स्वरूप है। और ये सब बातें अपने को चाहिए कि नहीं चाहिए? दुनिया के सुख दुख के लहरों में जो डूब रहा है, उतरा रहा है, घबरा रहा है, उसको अगर ऐसा मालूम हो जाए कि मेरा कोई समर्थ नाथ है जो नित्य विद्यमान है, अभी है, इसी समय है, तो उसे धीरज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वह मेरा अपना है, उसी से मेरा नित्य संबंध है, तो अनाथपन मिटेगा कि नहीं? और उसमें दो चार दिन का समय लगेगा, जैसे ही स्वीकार करेगा वैसे ही तत्काल होता है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर कि ध्यान नहीं जाता, लेकिन मुझे तो इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती थी। क्यों पड़ती थी? कि पहले से परमात्मा को मान करके चलने की मेरी आदत नहीं थी, इसलिए हमारे भीतर इस तरह की कोई धारणा ही नहीं थी कि भगवत भक्ति का क्या अर्थ होता है, तो दर्शन का क्या अर्थ होता है, तो मिलना कैसा होता है, तो उनका स्वरूप कैसा होता है। इसके संबंध में हमने कुछ कभी सोचा ही नहीं था। और महाराज जी जब मिले तो उन्होंने मना ही कर दिया, जैसे मैं आपको सुना रही थी कि देखी जी परमात्मा का कार्टून मत बनाना, तुम्हारा बनाया हुआ चित्र जो होगा वो तुमको जीवन नहीं दे सकेगा, ये उस परम प्रेमास्पद उस परम कौतुकी पर छोड़ दो। वो किस रूप में पसंद करेंगे, वो कैसे तुमको संभालेंगे, तो उनकी मर्जी पर छोड़ दो, तुम मत बनाना। तो हम सावधान हो गए, हमने कहा अच्छी बात महाराज, हम नहीं बनाएंगे। तो उस आधार पर मैं कहती हूँ कि कोई रूप विशेष देखने की बात तो मेरे भीतर थी नहीं, और कल्पना करूं और चिंतन करूं और धारणा करूं, ये सब बातें मुझको स्वभाव से भी पसंद नहीं थी और महाराज जी ने ये सब सिखाया भी नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आत्मीय संबंध की स्वीकृति, सत्ता की स्वीकृति, महिमा की स्वीकृति, उनको मेरे जीवन का आधार के रूप में मुझे स्वीकार करना है। ये सारी बातें जो है वो तत्काल ही आम रूपी अणु में परिवर्तन आरंभ कर देती हैं। घबराए हुए आदमी को धीरज मिल जाता है, नीरसता के अभाव, नीरसता से पीड़ित व्यक्ति को स्वतः ही भीतर से भरा भरा सा हृदय लगने लगता है। अपने को असमर्थ, अनाथ, असहाय समझने वाले को भीतर से ही ये बात ऐसी भर जाती है कि किसी भी क्षण में इस बात की विस्मृति नहीं होती कि मेरे नाथ हैं और वे समर्थ हैं। तो समर्थ नाथ का संरक्षण मेरे साथ है, इसकी विस्मृति कभी नहीं होती। तो आप क्या सोचते हैं, ये सब अपनी बहादुरी है कि उनकी उपस्थिति का परिणाम है? का परिणाम क्योंकि वो है तो मानते ही वो सब लगने लगता है अपने को, करने से नहीं होता है, जबरदस्ती करो तो नहीं बनेगा, लेकिन वो भीतर से ही ऐसे प्रकाशित होने लग जाता है, धीरज आने लग जाता है, रस बढ़ने लग जाता है, विश्वास बढ़ने लग जाता है। और कैसे कैसे करके प्रत्येक साधक को परमात्मा पूरी तरह से आश्वस्त कर देते हैं कि तुम्हारे गुरु ने जो कहा था सब ठीक बात है, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया ढंग से इस बात को वे साधक को दिखा देते हैं, समझा देते हैं, और पुराने रागों की निवृत्ति के काल में थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कभी व्यर्थ चिंतन और कभी शांति और कभी कुछ तरह तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन जो लोग करने के आधार पर चलते हैं तो उनको तो घबराहट हो जाती है कि अब क्या करें, अब तो फिर विकार आ गया, अब तो फिर संसार का चिंतन आ गया। और जो लोग उनके समर्पित होने के आधार पर चलते हैं तो उनको चिंता नहीं होती है, अब आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, अब मेरी जिम्मेदारी है नहीं। तो मैं ऐसा करती, स्वामी महाराज ने सिखाया था मुझको, तो मैं ऐसा सोचती कि हे महाराज, आपने दिया था बहुत बढ़िया बढ़िया, सब कुछ शुद्ध रूप में अच्छा से दिया था, मैंने अपनी भूल से सब बिगाड़ दिया, मन और चित्त और इंद्रियां और बुद्धि, ये सब तो समस्ती शक्तियां हैं, भौतिक तत्व हैं, ये क्रियाएं हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म तो मिलती हैं सब किसी को शुद्ध रूप में, उनके पास थोड़े अशुद्ध है, तो वो तो सब अच्छा ही अच्छा देते हैं, अपनी भूल से हमने इनको विकृत कर लिया। तो मेरी भूल से जो विकृति आ गई तो उसको अपने आप को हम निकाल ही नहीं पाते, और जिसने सर्वसमर्थ की शरण ली और उसकी कृपा शक्ति के भरोसे अपने को छोड़ दिया तो उसको वो निश्चिंतता आ जाती है। महाराज कभी कभी मुझे कहते कि तुम देख करके डरती हो काहे के लिए, अपना करके स्वीकार करती हो काहे के लिए, उन्हीं को कहते देख लो महाराज तुम्हारी वस्तु है, देख लो कैसा है, और तुम जानो तुम संभालो मेरा क्या है। तो एक बार समर्पण के बाद पुनः पुनः मन की चित्त की बुद्धि की इंद्रियों की विकृति देख करके चिंतित होना, दुखी होना, भाग ढोना, संभालने की चेष्टा करना बिल्कुल अपने विकास में बाधा के समान है। खूब अच्छी तरह से इस चीज को भर दिया। कभी कभी मैं परेशान हूँ कि महाराज अभी तक ऐसा नहीं हुआ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, तो शांत कर देते, पीठ पर हाथ फेर के, सिर पर हाथ फेर के, बस बस चुप रहो चुप रहो, शांत रहो, कुछ मत करो, और फिर कहते कि देवकी जी ये दोनों तरफ प्रयास चलेगा, ये कैसे होगा, तुमने उनसे भी कहा है संभालने के लिए और फिर अपनी ओर से लड़ती रहोगी, ये दोनों तरफ से कैसी चलेगी। तुम अपना बंद कर दो, तुम छोड़ दो, ये बड़े शक्तिशाली है, ये हर प्रकार से समर्थ है, ये सब कुछ जानते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे समर्थ स्वामी के हाथ में डाल देने के बाद फिर तुम अपनी चेष्टा क्यों आरंभ करती हो? ये दोनों तरफ नहीं चलेगा, तुम अपना बंद करो। तो इतना आराम मिलता था एकदम तत्काल, स्वामी जी महाराज के मुख से बात निकली। और बेचैनी जिसको होती है उसके लिए दवाई बहुत ही गुणकारी प्रमाणित हो जाती है। तो बेचैनी में, परेशानी में यह आवाज मेरे कान में पड़ती और सुनकर के मैं बिल्कुल शांत हो जाती। पता नहीं उस क्षण के बाद फिर उस तरह की परेशानी कभी मैंने अनुभव नहीं किया। इसलिए मैं इस बात को जानती हूँ। आप सभी भाई बहनों की सहायता के लिए मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि डरने की बात नहीं है, संदेह करने की बात नहीं है, उतावलेपन की बात नहीं है, सोचा नहीं है। बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से, सहज भाव से, सत्य की स्वीकृति से अहम में परिवर्तन होता है। सत्य की स्वीकृति से साधक के व्यक्तित्व में से साधन की अभिव्यक्ति होती है और साधन की अभिव्यक्ति से ही साध्य से अभिन्नता होती है। यह मेरी बात है।